Om Shivaya Nama. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Dashashloki, presented by Swami Sri Vishnu Vallabhanandaji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
न च विषय विरक्तिः ध्यानयोगेन शक्तिः इति मनसि सदाहं चिन्तयन् आद्यशक्ते रुचिरवचन पुष्पैः अर्चनं सञ्चिरोमि वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभात् पीताम्बरा दरुणबिम्बफलाधरुष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परम् किमपि तत्त्वमहम् न जाने ॐ भद्रम् नो अपि वातय मनः ॐ शान्ति 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 श्री शंकर भगवत पाद विरचिता दशश्लोकी न भूमिर्न तोयम् न तेजो न वायुर्न खं नेन्द्रियं वा न तेषाम् अनैकान्तिकत्वात् सुषुप्तेकसिद्धस्तदेको वसिष्ठ शिवः केवलोऽहम् न वर्णा न वर्णा श्रमाचारधर्मा न मे धारणाध्यान योगाद् अनात्माश्रयाहम् ममाध्यासहानात् तदेको वसिष्ठ शिव न माता पिता वा न देवा न लोका न वेदा न यज्ञा न तीर्थम् ब्रुवन्ति सुषुप्तौ निरस्तातिशून्यात्मक तदेको वसिष्ठः शिवः के न साङ्ख्यम् न शैवम् न तत् पाञ्चरात्रम् न जैनम् न मीमांसकारमतम् वा विशिष्टानुभूत्या विशुद्धात्मकत्वात् तदेको वसिष्ठ शिवः केवलोऽहम् न साङ्ख्यम् न शैवम् न चाधो न चान्तर्न बाह्यम् न मध्यम् न तिर्यम् न पूर्वापर वियद्व्यापकत्वादखण्डैकरूपस्तदेको वसिष्ठ शिव केवलो न शुक्लम् न कृष्णम् न रक्तम् न पीनम् न कुब्जम् न पीतम् न रस्वम् न अरूपम् तथा ज्योतिराकारकत्वात् तदेको वसिष्ठ शिवः केवलो न शास्ता न शास्त्रम् न शिष्यो न शिक्षा न च त्वम् न चाहम् न चायम् प्रपञ्च स्वरूपावबोधो विकल्पासहिष्णुस्तदेको वसिष्ठ शिवः केवलोऽहम् न जाग्रन्न मे स्वप्न को वा सुषुप्तिर्नभीषो न वातैजस प्राज्ञको वा अविद्यात्मकत्वात्त्रयाणां तुरीयस्तदेको वशिष्ठा शिवाके अपि व्यापकत्वाधिकत्वप्रयोगा स्वतः सिद्धभावात् अनन्याश्रयत्वात् जगतुच्छमेत समस्तं तदन्यत् तदेको वशिष्ठा शिवः केवलोऽहम् न चैकं तदन्यद्वितीयं कुतः स्यात् न वा केवलत्वं न चाकेवलत्वं न शून्यं न चाशून्यमद्वैतकत्वात् कथं सर्ववेदान्त वेदांत सिद्धं ब्रवीमि।
भगवान की असीम अनुकंपा से हम लोग दैनिक सत्संग के प्रवाह में गोता लगा रहे हैं। भगवत कृपा से ही ये सब संभव होता है। प्रातःकाल कितने भाग्यशाली हैं हम लोग, सत्संग कर रहे हैं। अभी तो कई लोगों के लिए सवेरा भी नहीं हुआ है। यही होता है आत्मज्ञान के लिए, आत्मकल्याण के लिए स्वयं प्रयास करना पड़ता है। कल तक ये विचार हुआ कि शरीर में और शरीर से भिन्न वस्तु में जो आत्मा का भाव है, इसका अलग अलग नाम रखा। अपने शरीर से भिन्न पत्नी, पुत्र, धन संपत्ति, हाथी, घोड़े, गाड़ी, मोटर, मकान, इन सब में जो आत्मत्व बुद्धि हो रही है, ये सब के सब गौण आत्मा है। और शरीर में जो आत्मत्व बुद्धि है, ये है मिथ्या आत्मा। और जो नवा केवलत्वम नचा केवलत्वम बोलते हैं, एक तो है केवल ब्रह्म, और उस ब्रह्म में थोड़ा विशेषण लगा दिया। कैसा है? शुद्ध ब्रह्म। शुद्ध ब्रह्म का जब आभास पड़ गया, अब वह ईश्वर, जीव आदि से अलग अलग नाम के द्वारा प्रयुक्त होने लगा। अंतःकरण ही एक ऐसी चीज है जिसके अंदर उस चित प्रतिबिंब चेतन का जो आभास है पड़ रहा है, इसलिए नाम पड़ा जीवात्मा, चिराभास। और उसके बाद फिर ये सारी बातें होंगी, शरीर ग्रहण करना, फिर उस शरीर का नाम रखना। असत्वापादक और अभानापादक आवरण जो बोलते हैं, ये भी चेतन के ऊपर ही होने वाली चीज है। चिद अस्ति और चिद भाति, चेतन है और वह चेतन मुझे प्रतीति में आ रहा है, हमें उसकी प्रतीति हो रही है। और जब बोलते हैं चिद नास्ति, चिद नमे भाति, चेतन नहीं है और वह मुझे प्रतीत नहीं हो रहा है, उसका भान नहीं हो रहा है, इसी जगह दो बातें लानी है। चिद नास्ति, चिद में न भाती, या चिद न भाती। अब कहेंगे चिद अस्ति और चेतन स्वरूपो हम, अपने प्रकाश रूपता सबको मालूम है। इसी के ऊपर ये सब आवरण आते चले जाते हैं। शरीर में जब आत्मत्व बुद्धि हुई, आचार्य बोलते हैं देहात्मा प्रत्ययो यदवत् प्रमाणत्वेन कल्पितः लौकिकं तद्वदे वेदं प्रमाणं त्वात्मनिश्चयात्। जैसे हम लोगों को अपने शरीर में जो आत्मत्व बुद्धि हो रही है ना, इसके लिए हमें कुछ पढ़ना नहीं पड़ा, जन्मजात मान लिया है। देहात्मा प्रत्ययो यदवत्, देह में जो आत्मा का प्रत्यय है, आत्मज्ञान जो हो रहा है, लौकिकम तद्वत्, जैसे लोक में लोग अपने शरीर को ही आत्मा मान करके चलते हैं, वैसे जिस दिन अपने आत्मा में आत्मा का निश्चय हो जाए तो समझ लीजिए अपना बेड़ा पार हो जाएगा। क्यों नहीं हो पा रहा है? पांच भूतों के निषेध करने के बाद जब शरीर को हम मान लेते कि मैं शरीर वाला हूं, अब उस शरीर का अपना वर्ण होगा, उसका अपना आश्रम होगा, उन सब का भी निषेध कर दिया। न वर्णा न वर्णा श्रमाचार धर्मा, न मे धारणा ध्यान योगादयोपी। ग्रंथकार बता रहे हैं वर्णा ब्राह्मणत्वादय, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य ये सब वर्ण है, जाति जिसको बोलते हैं हम लोग। चातुर्वर्ण मया सृष्टम, भगवान ने भी वर्ण ही नाम बताया। आश्रमा ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम। आचार, आचार क्या है? तो स्नान शौचादय, आचार के द्वारा। आचार परमो धर्म, श्रुति स्मृति सदाचार, सदाचार सदाचारानुसंधानम, ऐसा आचार्य जी का भी है, वो भी पढ़ना चाहिए। उसमें मालूम पड़ता है क्या क्या, जो सत परमात्मा को प्राप्त करने के लिए आचरण किया जाए वे सब के सब सदाचार कहलाते हैं। आचार स्नान शौचादय, धर्मा ब्रह्मचर्य गुरु सेवादय, ये सब धर्म है। नवे धारणा ध्यान योगादयोपि, अत्र द्वंद्वद्वय गर्भ षष्ठी तत्पुरुषेण वर्णानाम आचार धर्माश्च आश्रमाणाम अपि आचार धर्माश्च। प्रत्येक वर्ण और आश्रम के अनुसार सबको अपने धर्म में रहना चाहिए। धर्मोप्य अधर्मायति ऐसा आता है। पहले तो लोगों को लगता है कि अधर्म छोड़ने के लिए धर्म का आचरण करना चाहिए, लेकिन बाद में ऐसी स्थिति आती है कि वहां पर धर्म को भी छोड़ने की बात की जाती है। भगवान ने कहा सर्वधर्मान परित्यज्य, इसका अर्थ क्या करते हैं आप लोग? सारे धर्मों को छोड़ दो। तो किसी ने इसका बड़ा अच्छा अर्थ किया, ऐसे लोग होंगे जिनको बेईमानी करने में आसानी हो गई, बोले भगवान ने कहा सारे धर्मों को छोड़ दो मतलब अधर्म करो, ऐसा अर्थ लेते हो। जबकि वहां पर है धर्म को भी छोड़ने की बात की जा रही, तो अधर्म करने की तो बात ही कहां, ऐसा अर्थ करना चाहिए। लेकिन क्या अर्थ किया? भगवान बोल रहे हैं सारे धर्मों को छोड़ दो, इसलिए हमने सब कुछ छोड़ दिया है, अधर्म को लिए कुछ कहा नहीं है, वो मैं करता हूं। ये कई बार अर्थ ऐसा करते लोग अनर्थ का कारण बन जाता है। आम्नायस्य क्रियार्थत्वात् अनर्थक्यम् अतदर्थानाम्, वेद के मंत्रों की किसमें अर्थक क्रियाकारिता है, किस प्रयोजन से मंत्र का प्रयोग किया गया है, ये यदि पता न हो तो अर्थ का अनर्थ होने लगता है। आम्नायस्य क्रियार्थत्वात् अनर्थक्यम् अतदर्थानाम्, तदर्थ में है तो ठीक है, अतदर्थ करेंगे तो उल्टा होगा। धारणा का अर्थ किया ब्रह्मणि बाह्य विषय त्यागेन मनसस्थैर्यम्, बाहर के वस्तुओं का त्याग करके परमात्मा में ही अपने मन को स्थिर करना, इसका नाम है धारणा। जबकि धारणा का अर्थ ये भी हो सकता है किसी भी वस्तु को अपने मन में धारण करो, वो भी धारणा शब्द से प्रयोग हो सकता है। हिंदी में भी तो लोग बोल देते इसकी धारणा अच्छी नहीं है, अर्थात इसका मनोभाव अच्छा नहीं है। तो यहां पर धारणा का अर्थ किया बाहर के वस्तुओं का त्याग पूर्वक ब्रह्म परमात्मा में ही अपने मन को टिकाना, इसका नाम है धारणा। धारणा ब्रह्मणी बाह्य विषय त्यागे न मनसस्थैर्यम ध्यानम, ध्यान करो, ध्यान का अर्थ किया परमात्म चिंतनम इति ध्यानम, परमात्मा का चिंतन करना ही क्या है, ध्यान है। आप लोग अभी क्या कर रहे हैं, ध्यान लगा रहे हैं, आंखें खुली है तो क्या हुआ, कुर्सी में बैठे टांग लटका के तो क्या हुआ, है ये कौन सी मुद्रा, ध्यान की मुद्रा, क्योंकि तो परमात्मा का चिंतन चल रहा है। ऐसा नहीं गंगा किनारे पलथी मार के बैठे तभी ध्यान है, जब जब चित्त में बाहर की वस्तुओं का चिंतन न हो, एकमात्र परमात्मा का ही चिंतन हो, ये सब ध्यान के अंतर्गत ही माना जाता है। लोग में भी बोलते हैं जब आप बात करते हो किसी चीज की, तो लोग बोलते हैं अरे वो बात करता है और चीज के, ध्यान उसका और कहीं रहता है। तो ध्यान का मतलब होता है जो मन में वृत्ति चले, मन में भाव चले, बाहर चाहे कुछ भी बात करो उससे फर्क नहीं पड़ता है। और मन में आंख बंद करके बैठे हो, दिख तो रहा है कि बाहर के वस्तु की तरफ इनका ध्यान नहीं है, और आंख बंद करके कर क्या रहे, बाहर के वस्तु का ही चिंतन कर रहे हैं, तो उसका नाम ध्यान नहीं होगा। ये यहां पर अध्यात्म शास्त्र के हिसाब से व्यवहार में तो कह सकते हैं कि इस बात पे ध्यान दो, उसको याद करो, आप तुम किसी भी काम पे ध्यान नहीं देते हो, भोजन बनाने में ध्यान दो, पढ़ने में ध्यान दो, तो ध्यान शब्द का तो बहुत जगह प्रयोग होता है। लेकिन यहां पर नवे धारणा ध्यान योगादयोपी, कुछ भी करने से परहेज करना, ऐसी परिस्थिति आ जाती है जैसे कल आप लोगों ने जीवन मुक्त का लक्षण सुना कि कैसा उनका जीवन होता है, जिसमें कुछ बात रह गई थी वो भी हम आपको सुना देते हैं। योगश्चित्त वृत्ति निरोधः, ये तो सुस्पष्ट ही है, चित्त के वृत्तियों का जो निरोध करना, रोकना, इसका नाम है योग। आदि शब्देन, क्योंकि नवे धारणा ध्यान योगादयोपी, आदय शब्द आया, आदि से बहुवचन में आदय बनता है, तो आदि शब्देन श्रवण मननादयो गृह्यन्ते, श्रवण भी करना मनन भी करना। सर्वेषां ज्ञानोत्तर काले असत्वे हेतु माह, वर्ण वर्णाश्रम आचार धर्म धारणा ध्यान योग आदि श्रवण मनन, ये सब के सब ज्ञान से, ज्ञान प्राप्त करने से पहले इन चीजों की आवश्यकता है, ज्ञान हो जाने के बाद फिर किसी चीज की आवश्यकता नहीं रह जाती। अनात्मा श्रयाहम ममाध्यास अनाथ, अनात्मा मतलब आत्म विरोधिनी अविद्या, अनात्मा का अर्थ किया जो आत्मा के विरोधी। हम तो कई बार आते हैं यहां, आप लोगों को सुना भी चुके हैं, याद है या नहीं पता नहीं, अविद्या बता दिया कि आत्म विरोधिनी अविद्या, इसका नाम है अनात्मा। तदाश्रय तद उपादान यो अहंकार ममकारादि अध्यासस तस्य मूलस्य अपि तत्वज्ञानेन हानात् तत्प्रयुक्त वर्णाश्रवादि व्यवहारो नास्तित्यर्थः। जब अविद्या के आश्रय, जो शरीर आदि को हम मानते थे आत्मा, उसमें जब आत्मत्व बुद्धि समाप्त हो गई, तो फिर अहंकार और ममकार, अहंकार क्या है, एक तरह से अपने स्वरूप को ही ढक लेना, और जब अपना स्वरूप ढका जाएगा, आवृत हो जाएगा, तब जाके फिर विक्षेप उत्पन्न होता है। ममकार, सर्वत्र यही नियम लागू होगा, पहले मैं फिर मेरा, मेरा के बाद तेरा, तेरा के बाद तुम्हारा, तुम्हारे के बाद तुम सबका, ऐसा चलता है। तो सारी जड़ तो कहां पर है, पहले अहंकार, फिर होता है ममकार, फिर होता है तवकार, मम तव, ऐसा व्यवहार चलता है। यो अहंकार ममकार ममकारादि अध्यास तस्य मूलस्य अपि तत्वज्ञानेन हारात् अनात्मा श्रयाहम ममाध्यास हारात्। अनात्मा के आश्रित रहने वाले जो मम अहम रूप जो अध्यास हो रहा था उसका हारात नष्ट हो गया, ममाध्यास हारात। फिर होगा तदेको वशिष्ठ शिव केवलोहम। ये मूल रूप से इसका अर्थ थोड़ा ध्यान में रखना है। ज्ञानियों के लक्षण उनकी पहचान करना ये बहुत कठिन काम है। ज्ञानी कभी भी अज्ञानी की परीक्षा नहीं करते, लेकिन अज्ञानी ज्ञानी की परीक्षा जरूर करते हैं। ये समझ में नहीं आ रहा है, कैसे करोगे? यदि आपको पता ही नहीं कि ज्ञानी किसको बोलते हैं तो उसकी परीक्षा हम कैसे करेंगे? कई बार लोग बोलते कुछ पूछो तो सही, आता है कि नहीं आता, अपने को बड़ा ज्ञानी मानता है। और ज्ञानी ऐसे होते हैं कि कभी कुछ पंगा नहीं लेते। जैसे आप लोग हैं, कहीं पंगा लेते हो क्या? लेते हो तो फिर अज्ञानी का लक्षण आ जाएगा। जाट कहे सुन जाटनी, इसी गांव में रहना, ऊंट बिलैया ले गई हाजी हाजी कहना। जब कोई कहे कि ऊंट को बिल्ली ले गई तो ये मत कहना कि कैसे ले जा सकती है बिल्ली। हाँ जी ठीक है, बहुत अच्छा। कई ऐसा स्वभाव बन जाए ना, ये ज्ञानी की बात चल रही है। आप घर में भी बेटा कहे हम वहां जा रहे, अच्छा बेटा बहुत बढ़िया, नहीं जा रहे अच्छा बेटा कोई बात नहीं। आग्रह बुद्धि छोड़ दो, आप घर में भी सबके लिए प्रिय हो जाओगे। जा रहा हूं, क्यों जा रहे हो, कहां जा रहे हो, कब आओगे, क्यों जा रहे हो, फिर आपको आधी बात बताएगा आधी बात नहीं बताएगा, फिर धीरे धीरे कोई भी बात नहीं बताएगा। बोले हर जगह ये टांग अड़ाते, बताओ तो बोलते क्यों जा रहे हो, इससे अच्छा नहीं बताना ही ठीक है। नहीं बताने से केवल इनको टेंशन होगा, बताने से तो हमको भी टेंशन देते। तो आप लोग तो ऐसे नहीं करते ना घर में, कहां जा रहे क्यों जा रहे हो, चल अच्छा निकल गया बता के फिर पीछे से फोन करते कहां पहुंचे अभी, खाए पिए कि नहीं, कुछ जो दिया था वो खाया कि नहीं खाया। अरे बाप रे बाप, ऐसा पीछे पड़ते वह जीना हराम हो जाता है। तो आग्रह अभिनिवेश बुद्धि जो है अपने शरीर को लेकर ही होता है सब कुछ। जैसे लगता है मैं कभी न मरूं, हमेशा जीवित रहूं, होता तो है नहीं ऐसा। ऐसे हम दुनिया को चाहते अपने हिसाब से चला ले। एक बार क्या हुआ, कोई ऐसे थे अपने स्वरूप में स्थित हो चुके थे, बैठे रहते थे आराम से। अब एक बड़े कर्मकांडी जिनके सुबह से शाम तक कुछ न कुछ होता रहे, रजोगुणी जब वृत्ति होती है तो कुछ न कुछ खटपट करने की आदत पड़ जाती है। घर में भी आप देखो कोई शांत व्यक्ति होगा तो उसको जो इधर उधर खटपट करने वाले होते हैं उनके दृष्टि में महा आलसी निकम्मा आदमी दिखता है। और कुछ बार कई बार लोग इसका दुरुपयोग भी करते हैं। मैं तो अपने स्वरूप का चिंतन करता हूं, मुझे कोई लेना देना नहीं। तो काम के समय में ही स्वरूप का चिंतन होता है क्या? अभी तो कह दिया ध्यान का मतलब ही है परमात्म चिंतनम ध्यानम। और परमात्मा का चिंतन करने के लिए बैठो या कुछ काम करते रहो, उससे फर्क नहीं पड़ता है, वृत्ति चलते रहना चाहिए अंदर, तब बात बनेगी। तो वो बैठे थे बड़े आराम से। अब वो जो कर्मकांडी था बोले महाराज आप कुछ करते हो कि नहीं? पहले तो उन्होंने सोचा इसको क्या जवाब दूं, तो कहा नहीं कुछ नहीं करता हूं। ऐसे कैसे होगा, कुछ ना कुछ तो करना चाहिए ना, ऐसे बैठे बैठे कैसे टाइम पास होगा? टाइम किसका पास नहीं होता है दुनिया में, मनुष्य को छोड़ करके सबका टाइम पास होता है। आप देख लो किसी को भी, गाय भैंस पशु पक्षी सबके टाइम पास आराम से होता है। केवल एक ही व्यक्ति है दुनिया में मनुष्य, उसको हमेशा अपने टाइम पास की चिंता रहती है, कैसे चलेगा, रिटायर होने वाले हैं, 60 साल की उम्र हो गई। अब हमारे यहां तो अभी जो वर्णाश्रम की बात चल रही है तो 50 साल के बाद तो वानप्रस्थ आश्रम की बात आ जाती है, सरकार तो कम से कम 10-15 साल के बाद रिटायर करती है, 60 में 65 में 58 किया है। अच्छा 58 किसी के हो और उसमें यदि 4-5 साल 55 में घटा के लिखते हैं आजकल लोग, उसका मतलब वो 65 तक बेनिफिट ले लेते हैं, होते हैं तभी गड़बड़ होता है, यदि एग्जैक्ट 58 होना तो बढ़िया हो जाए। तो 60, 62, 64, 65 में रिटायर होते हैं। और आत्मदेव जी को गोकर्ण जी ने कहा कि आप जो है गत 60 वर्ष कैसे, उन्होंने 60 साल के बाद की जो उम्र थी 100 साल तक पूरा एकांत में रह करके, और गोकर्ण जी ने जैसा उपाय बताया तदनुसार आत्मदेव जी ने अपना आत्म कल्याण किया। भागवत के महात्म का ये उदाहरण अत्यंत प्रसिद्ध है, सब आप लोग जानते हैं। ऐसी अवस्था में वानप्रस्थ आश्रम में जाने की बात की जाती है, 50 से ऊपर 60 हो गए, 65 हो गए, फिर भी कहीं कुछ छोड़ने की बात तो आती ही नहीं, बहुत कठिन है। अब रिटायर हो जाएंगे, कैसे टाइम पास होगा, तो थोड़ा बेटा को दुकान दे दिया है, वहीं जाके थोड़ा बैठ जाया करेंगे, वो नहीं हुआ तो कहीं महाराज आपको ऐसा आश्रम बताओ, बस अपने कुछ करना नहीं, हमको वहां से कुछ लेना भी नहीं, 2 टाइम की रोटी मिल जाए, जितना होगा हम आश्रम की सेवा कर देंगे। और जो उसको खटपट करने की आदत होगी तो आश्रम में जाएगा तो वहां भी खटपट शुरू कर देगा। ये जो राजस वृत्ति है ना, कुछ खटपट करने की आदत, शांति से जो नहीं बैठना होता है, इसलिए एक उम्र ऐसी होती है उसमें यदि अभ्यास किया जाए, सबसे बड़ी बात है आग्रह का भाव यदि छोड़ देवे व्यक्ति, तो हमें लगता है 90% तो शांति आ ही जाएगी। अब 10% जो कुछ विक्षेप होगा वो प्रारब्ध अत्यधिक प्रबल होने के कारण हो सकता है, जिसका निराकरण करना थोड़े मुश्किल हो, लेकिन 90% की तो गारंटी है यदि आग्रह के भाव का त्याग किया जाए तो।